नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि 2023 में कम से कम दो और मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। गोयल ने ये कार्यक्रम में कहा कि ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच बातचीत होनी है। उन्होंने कहा, भारत आज मजबूती के साथ बात करता है, हम विश्वास के साथ बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल देश कम से कम दो FTA पर हस्ताक्षर करेगा। इस साल अप्रैल में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि जनवरी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और विदेश में उनके समकक्षों के बीच कई बैठकें होनी हैं। समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पहले भारतीय माल के लिए मूल प्रमाण पत्र सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि FTA से कपड़ा, रत्न और आभूषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि ओडिशा में अगले वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य में दूरसंचार सेवाओं के लिए 5,600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा, अब कोई भी केंद्र पर ओडिशा के दूरसंचार क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने आगे कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा में दूरसंचार सेवाओं के लिए कुल 5,600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और राज्य में 5G सेवाएं 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले शुरू हो जाएंगी। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखने के कार्यक्रम में वैष्णव ने बताया कि ओडिशा के उन सभी गाँवों में हाल में एक सर्वेक्षण किया गया जहाँ मोबाइल टावर नहीं है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में बैंकॉक से कोलकाता जा रहे एक विमान में सवार यात्रियों के बीच झड़प की जो वीडियो क्लिप सामने आई, उसके बारे में जांच की जा रही है। विमान के अंदर हाथापाई का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें कुछ यात्री एक व्यक्ति को बार बार थप्पड़ मारते दिख रहा है। BCAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने बृहस्पतिवार को PTI भाषा से कहा, BCAS ने उक्त वीडियो का संज्ञान लिया, हमने जांच शुरू की है और इसके निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 21 रुपए के नुकसान के साथ 54,963 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 54,984 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 464 रुपए की गिरावट दर्शाती 69,117 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जिन्स शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा, बैंक ऑफ जापान सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति के बारे में चिंता व्यक्त की और अगले साल ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। आज निवेशकों की निगाह अमेरिका के साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़ों पर होगी। जनवरी 2023 से 50 हॉर्स पावर से अधिक की इंजन शक्ति के ट्रैक्टरों के लिए नया उत्सर्जन मानक भारत स्टेज TREM4 लागू होने जा रहा है, जो घरेलू ट्रैक्टरों की मात्रा के लगभग 7-8% भाग को प्रभावित रखेगा। साख निर्धारक एजेंसी इकरा के अनुसार इस नए मानक के कारण निर्माताओं पर जो लागत वृद्धि का बोझ आएगा, उसे धीरे धीरे ग्राहकों को पर डाले जाने की संभावना है। इकरा ने एक बयान में कहा, कुल उद्योग का एक बड़ा हिस्सा जिसमें 50 हॉर्स पावर से कम इंजन शक्ति वाले ट्रैक्टर आते हैं, उनकी कुल बिक्री में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 92% थी और इन पर भारत स्टेज TREM3A मानदंड लागू रहेंगे। 50 HP से अधिक के श्रेणी के लिए संशोधित उत्सर्जन मानदंडों के क्रियान्वयन को शुरू में अक्टूबर 2020 से लागू किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बीच सरकार ने उद्योग के प्रतिनिधित्व का संज्ञान लेते हुए इसे कई बार टाल दिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों के लिए लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें वह दूरसंचार, खुदरा और नवीन ऊर्जा कारोबार की जिम्मेदारी देने वाले हैं। धीरूभाई अंबानी की जयंती पर मनाए जाने वाले रिलायंस फैमिली डे के अवसर पर मुकेश अंबानी ने कहा कि तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा तक का कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आत्म परिवर्तन की विस्तृत यात्रा पर चल पड़ी है। बुधवार शाम को अपने संबोधन में अंबानी ने कहा, वर्ष 2022 के अंत में रिलायंस अपने स्वर्णिम दशक की आधी दूरी तय कर चुकी होगी। अब से 5 साल बाद रिलायंस की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उनका संबोधन मीडिया के लिए बृहस्पतिवार को जारी किया गया। कर्ज में दबी रियलिटी कंपनी सुपरटेक के अंतरिम समाधान पेशेवर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया कि इस कंपनी ने संबंधित विकास प्राधिकरणों से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर ही 18 आवासीय परियोजनाओं में 9,705 फ्लैट घर मालिकों को सौंप दिए। अंतरिम समाधान पेशेवर हितेश गोयल ने कंपनी के बारे में स्थिति रिपोर्ट राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंपी। सुपरटेक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के इस वर्ष 25 मार्च के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी। NCLT ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की थी। ये मामला अभी NCLT के समक्ष लंबित है। ये स्थिति रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में 18 आवासीय परियोजनाओं से संबंधित है। इसे NCLAT को 31 मई को सौंपा गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।